وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله, اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ کا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے, دین اللہ کے لیے صرف ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب اگر ایک دفعہ لڑائی شروع ہوگی نا, اول تو پہلے تم نے لڑائی شروع نہیں کرنی, لیکن لڑائی اگر شروع ہو گئی ہے تو اب یہ رکے گی نہیں جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, فتنے کو ختم کرنا پھر تمہارا گول ہونا چاہیے. پھر صرف اگر وہ سرنڈر کر دیں کہ بھئی وہ بھاگ گئے ہیں واپس, تو اب آپ کہیں چھوڑ دو اب ان کو, نہیں, لڑو ان سے جب تک فتنہ نہ ختم ہو جائے. ایک ایک یہ بھی بات یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں وار صرف اور صرف سیلف ڈیفنس میں ہو سکتی ہے, ادروائز نہیں ہو سکتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام میں افینسو وار بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کس صورت میں؟ کہ کہیں فتنہ ہے تو فتنے کو ختم کرنا, کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے, لیکن وہ کون کرے گا؟ یاد رکھیے یہ والے جو احکامات ہیں نا, وقاتلوہم حتی لا قدر اور وقتلوہم, آپ دیکھ لیں جمع کسی کے آ رہے ہیں, ایک بھی بندے کو نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پہ, انڈیویجولس کو نہیں. نماز کی طرح یہ نہیں ہے, روزے کی طرح یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولس کو کہا جا رہا ہوں. یہاں پہ کس کے لیے؟ پورے معاشرے کی بات ہے, یعنی حکومتی لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا, اور حکومت یہ کرے گی کہ کہیں جا کے قتال کر رہی ہے, اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے. اس کا آرڈر کون دے گا؟ حکومت. بالکل ایسے ہی جیسے حکومت ہوتی ہے نا, وہ دیکھتی ہے کہ ایک جگہ پہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے تو اس قاتل کو سزا دی جائے. کیا یہ انڈیویجولس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یا پھر حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ حکومت کے ہوتا ہے نا. اگر انڈیویجول کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو پھر مصیبت ہی پڑ جائے گی. تو کوئی کسی کو قتل کرے گا, قتل کسی نے کیا ہوا, اس نے دوسرے کو کر دیا, پھر انہوں نے آ کے اس کو کر دیا, پھر انہوں نے اس کے 10 مار دیے, پھر اس نے ان کے 4 مار دیے, پھر انہوں نے اس کی عورتیں اٹھا لیں, پھر انہوں نے ان کی بھی عورتیں. یہ تو پھر تو یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ کوئی اندھا قانون نہیں ہے. کیا ہوگا؟ عدالت فیصلہ کرتی ہے, پھر سزا دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح قتال فی سبیل اللہ بھی انڈیویجول کام نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں کھڑا ہو کے امام مسجد کہہ دے جی اب ایسا ہوگا, کوئی کھڑا ہو کے یہ فیصلہ کر دے جی اب سے جہاد شروع ہو جائے گا فلاں ملک کے خلاف, فلاں لوگوں کے خلاف, اب ہم بس قتال کرنے جا رہے ہیں. قتال جو ہے وہ جہاد کی یعنی جو لاسٹ جو اس کی فارم ہے نا وہ ہے قتال. اٹس اے پارٹ آف جہاد بٹ ٹوٹلی جہاد قتال نہیں ہے. قتال از پارٹ آف جہاد, ٹھیک ہے, ایک سیگمنٹ سمجھنے جہاد کا. جہاد تو بہت براڈ ہے, جہاد تو سٹرگل کو کہتے ہیں. آج اتنا یہ لفظ بدنام کر دیا کہ یہ لفظ بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ گالی ہے. ایسا نہیں ہے. اب جب ہمیں سمجھ خود نہیں ہے ہم کسی کو بھی کیا سمجھائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈیفنس میں ہوگی, بلکہ جب ظلم ہو رہا, مثلاً کہیں فتنہ ہے اور ایک اسلامی حکومت ہے جس جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ فتنے کو ختم ہونا چاہیے, اب سیکنڈ اس کی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور ہو پھر کہ وہ فتنے کو ختم کر سکے, تو پھر وہ لڑے گی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. نمبر ون کیا سمجھ آئی؟ کہ یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلے کریں, کہ وہ گھر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں یا کچھ چھوٹا سا گروپ بنا کے اس میں فیصلے ہو رہے ہیں اور خود ہی چل پڑے کرنے کچھ. ایسے نہیں ہوگا, حکومتی لیول کے اوپر ہوگا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بیسڈ. بالکل. نمبر ٹو کیا بات ہے اس کے اندر؟ کہ پھر وہ حکومت بھی اتنی قابل ہو کہ وہ اس کے اندر طاقت ہو کہ وہ فتنے کو ختم کر سکے. یہ نہ ہو کہ وہ خود بےچاری بساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ خود مریض ہے, بیمار ہے, وہ ملک بھی اتنا غریب ہے, وہ ملک بھی, کہ وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا, وہ اس نے کسی کا مقابلہ کیا کرنا. تو پھر بھی نہیں اس کے اوپر لازم کہ وہ یہ کرے. کیا تو کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں, اندھا دھند کوئی چیز نہیں ہوتی. جیسے آج بالکل ہی اندھے ہو گئے, اندھا دھند, جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے تلوار اٹھا لیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے ہتھیار اٹھا لیتا ہے, اور بس سمجھتا ہے کہ بس اب میں تو اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوں. ایسے نہیں ہے, یہ وہ نماز روزہ نہیں ہے جو آپ کو انڈیویجولی ایک ایک کو حکم دیا گیا. تو اب جب وہ تمہیں مجبور کر دیں, تم ان سے وہ سٹارٹ کر دیں اور تم ان سے جنگ کرنے شروع کر دو, تو اب یہ جنگ ایسے نہیں ختم ہو جائے گی. اب جب تک یہ فتنہ نہ ختم ہو, کیونکہ اصل مقصد ہی ہے کہ فتنہ ختم ہو, یہ جبری نظام ختم ہو, یہ دین سے لوگوں کو روکنا یہ ختم ہو, مذہبی آزادی ملے لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور یہ کتنا بڑا فتنہ کہ وہ جگہ آپ سوچیں, جس جگہ کو آپ نے فرسٹ پارے کا اگر اینڈ دیکھا ہو تو آپ ने देखा पढ़ा आपने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा को बिल्ड कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो उन्होंने ये घर क्यों बिल्ड किया, वो अल्लाह से क्या दुआएं कर रहे हैं कि ये एक तौहीद का मरकज, शिर्क ना यहाँ पे हो। और वो जो घर बना ही इसलिए था कि ये तौहीद का सेंटर बने, वहां पे ही आके शिर्क शुरू हो गया, वहां पे 360 बुत रख दिए उन्होंने। ये तो था ही अल्लाह ताला को कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह का कलमा यहाँ पे लेने के लिए। और इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआएं कितनी की, और कितनी उन्होंने उनकी जो लास्ट जो विल थी, जो उन्होंने जो वसीयत भी की थी याकूब अलैहि सलाम ने, और उससे पहले इब्राहिम अलैहि सलाम, और इनकी भी बात आती है कि उन्होंने क्या कहा, फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मरना ना मगर मुस्लिम। उनकी तो जिंदगी का एम ही तौहीद था, तुमने उनके बनाए हुए घर पे बुत रख दिए, तो इसको तो बुतों से पाक करना ही है। ये भी फितना है कि यहाँ पे शिर्क हो रहा है। और फिर देखिए किसी का राइट नहीं था कि किसी को हज और उमरे से रोके, कभी नहीं किसी का राइट। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया कि उमरे से ही रोक दिया, और हज पे आने की तो क्या किसी को इजाजत ही नहीं थी, कुछ सर कटवाने थे। तो इन्होंने क्या समझ लिया कि ये अब हमारी इजारादारी, हम मालिक हो गए इस घर के, हम जिसको चाहेंगे इजाजत दें आने की, जिसको चाहेंगे नहीं आने की इजाजत दें, ये उनके हाथ में नहीं था। तो इसलिए ये हमें यहाँ पे समझ आती है कि फितना क्या चीज होती है, और फितने से रोकने के लिए, फितने को खत्म करने के लिए फिर लड़ना, यहाँ पे उसको कहा गया कि ये तुम्हारा फिर एम होना चाहिए। और क्या हो जाए, वयकून दीनु लिल्ला, और दीन अल्लाह का लिए हो जाए, यानी इस जगह में फिर और कोई दीन बाकी ना रहे, फिर अल्लाह की हाकमियत आ जाए यहाँ पे, फिर ये शिर्क यहाँ से फिर खत्म हो जाए, फिर तब तक लड़ना होगा। फइनतहौ फला उदवान इल्ला अला ज़ालिमीन, फिर अगर वो रुक जाए तो तुमने नहीं कोई ज्यादती करनी, मगर सिर्फ फिर जालिमों के ऊपर होगी, जो जालिम है, जो फिर भी नहीं रुकते, और फिर भी फतह मक्का के मौके पर भी बास कुफार को मारा गया था, कत्ल किया गया था, क्योंकि देखे को जो नहीं रुक रहा, जो जो तुला हुआ इस चीज के ऊपर, तो फिर उसके साथ तो फिर यही होगा। लेकिन अदरवाइज जो फिर रुक जाए, जो सरेंडर कर दे और नहीं लड़े, और ये फितना वगैरह खत्म कर दें, शिर खत्म हो गया, छोड़ दिया इन चीजों को उन्होंने, तो फिर ठीक है, फिर तुमने भी नहीं आगे ज्यादती करनी कि नहीं हमने मारना है, हमने पिछले बदले लेने। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमात क़िसास, यानी शहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुरमत वाले महीने, पहले तो ये समझे कि वो कौन सी हैं हुरमत वाले महीने। हुरमत वाले महीने, एक अलग से महीना रजब का, रजब, ठीक है। दूसरा जो ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 4 मंथ्स हैं जो हुरमत वाले हैं, ठीक है। हुरमत वाले महीने, इनके अंदर ये जो रजब का महीना था, इसमें ये लोग उमरा करने के लिए जाते थे, अरब में ये था, और ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम ये हज के लिए थे। तो मुशरिकीन मक्का में भी ये कानून समझ लें था कि इन महीनों के अंदर बिल्कुल अमनो अमान किया जाता था, कोई किसी को ना लूट मार करता था, ना कत्लो गारत करता था, ना कोई जंग होती थी, कि सेफ एक पैसेज दिया जाए मुसलमानों को, नहीं लोगों को, क्योंकि ये हज उमरे पहले भी होते थे ना, कि लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए कि वो आए और आके हज उमरा करें। दूर दूर से लोग आते थे, उनको रास्ते में ये कोई खतरा नहीं होता था कि हमें कोई लूट लेगा, कोई मार देगा, कोई कुछ होगा, तो सेफ्टी दी जाती थी। तो इन महीनों के अंदर किसी को नहीं कुछ कहा जाता था। अब जब मुसलमान, जब मैंने आपको बताया ना 7 हिजरी में जब मुसलमान उमरा कजा करने के लिए आ रहे थे, तो उनको एतबार नहीं था ये काफिर जो हैं अब हमारे साथ हो सकता है कि कुछ करें, कोई जंग करें, तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम हुरमत वाले महीने में उनके साथ जंग का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये ज़िलक़ादा का महीना है जो शहरुल हराम में से है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो इसके जवाब में ये आयत उतरी। अब उनको पता होना चाहिए ना कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हम क्या, तो फरमाया गया शहरुल हराम बिशहरिल हराम, यानी अगर वो वायलेट करें हुरमत को इन महीनों की, तो तुम भी फिर उनसे लड़ो। नहीं, वो अगर इनके तकद्दस को नहीं समझ रहे, इनका तकद्दस पामाल कर रहे हैं इन महीनों का, इन मोहतरम महीने हैं ना ये, एहतराम वाले महीने, इनकी हुरमत को ही वो नहीं कुछ जान रहे और उसको पामाल करते, तो फिर तुम भी उनसे इसमें लड़ सकते हो। वल हुरुमातु क़िसास, और हुरुमात का किसास है। हुरुमात क्या है? ये जो भी ये वायलेशंस हो रही हैं इनका किसास है। जो मोहतरम चीजों में जो भी ऐसा कोई मामला किया जा रहा है, जो मोहतरम चीजें हैं, मसलन है ये महीने मोहतरम है, वो अल्लाह ताला का घर मोहतरम है, मस्जिद हराम ये मोहतरम जगह है, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उसका किसास है फिर, यानी बदला लिया जाएगा फिर। फमन यातदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिथ्लि मा तदा अलैकुम। फिर ये याद रखना, जो कोई ज्यादती करे ना तुम पे तो तुम भी ज्यादती करो उस पर, मानिंद उसके जो ज्यादती की उसने तुम पर, जो ज्यादती करे तुम पर तो फातदू अलैहि का मतलब क्या है? तुम ज्यादती करो उस पर। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान इन रिटर्न करेगा वो ज्यादती होगी, बल्कि लफ्ज को वैसा ही लफ्ज लाया गया, इक्वल लफ्ज इसलिए लाया गया ताकि पता चले कि बदला भी इक्वल होगा, मगर उसको ज्यादती नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ज्यादती तो वो है ना जो बुरी चीज है ना, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, ये गलत नहीं होगा फिर, ये सिर्फ बदला होगा फिर। लेकिन एतदव क्यों आया? एतदव इसलिए आया कि ताकि बताया जाए कि बराबर जैसी उसने की उसके माने तुमने करनी, उतनी ही तुमने करनी, उससे ज्यादा नहीं, उससे बढ़ के नहीं। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, इतनी मिसालें आपको दी है ना कि जिसने जैसी की होगी, मुजरिम को एक तो सजा देनी है और उतनी सजा देनी जितनी के उसने की, ठीक है? यहाँ पे तो जैसे कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कोई ऐसा वो आपके साथ ज्यादती करते हैं, तो अब आपने ये नहीं करना कि इन्होंने हमारे साथ उस वक्त भी ऐसा किया था, इन्होंने तो हमारे साथ वहां पे ऐसे जब हम मक्का में थे तो ये हमारे साथ ऐसे करते थे, और उस सारी उनको मिला के और फिर अपना भी ग्रज और अपना भी गुस्सा और ये सब करके फिर उनके साथ वो कर रहे हैं। नहीं, देखें इस्लाम के अंदर ना हुकूमत बढ़ाने के लिए कोई जंग नहीं की जा सकती, किसी जगह के रिसोर्सेज लेने के लिए नहीं कोई जंग की जा सकती, कोई पॉलिटिकल गलबे के लिए, सियासी गलबे के लिए नहीं जंग की जा सकती, लूट मार के लिए नहीं जंग की जा सकती, इनमें से कोई जंग फी सबीलिल्लाह नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब किसी ने फितना बरपा किया, जब किसी ने इनको निकाला, जब किसी ने जुल्म और जबर किया, जब किसी ने ये करा कि उनको ये आजादी नहीं कि वो अल्लाह का नाम ले सके, तो फिर अब मुसलमानों को इजाजत दी जा रही है कि तुम उतना ही बदला ले लो। वो अगर तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं और तुम्हें साथ जंग करते हैं तो फिर अब तुम भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको मैंने इसकी बता दी ना कि इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और समझने की ये बात है कि देखें, जब ज्यादती का मामला आता है ना, इंसान ज्यादती करने पे तुल जाता है, तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये लोगों का स्लोगन है ना, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, निहत्ते लोगों को नहीं मारना, अमला को नहीं नुकसान देना, इसे नहीं करना, तो ये इतने सारे रूल्स हमें बताए गए ताकि ज्यादती ना हो किसी के साथ। सब फेयर नहीं है जंग में कि जो मर्जी चाहो करो, मारा किसी ने करा किसी और को, दास औरतें भी होती है ना, लड़ाई शौहर से होती है, तो कहती हैं अच्छा इसने मुझे इतना सुताया, बद्दुआएं किसको देती हैं? अल्लाह तेरी बहन की भी घर उजड़े, जैसे मेरा तू कर रहा है तेरी बहन के साथ भी उसका हस्बैंड ऐसे कर, बहन का क्या कसूर, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसे है, हालांकि वो अपनी भी बेटियां होती हैं, उनके भी अल्लाह करे ऐसे आगे आ जाए। देखे जो बेकसूर होता है ना या मजलूम होता है, वो भी जो भी अपना बदला लेगा वो सिर्फ उसी से ले सकता है, और उतना ही ले सकता है जितना कि उसके ऊपर जुल्म हो, इतनी इजाजत है सिर्फ, क्योंकि ये इंसाफ है, सिर्फ उतनी इजाजत है। माफ कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन इजाजत भी कितनी है, सिर्फ उतनी। लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाना, बेकसूरों को बीच बीच में घसीट रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं, कि जब लड़ाइयां घरों में भी होती हैं तो आप देखेंगे कितनी ज्यादती पे हर फरीक उतर आता है, एक ने एक किया होता ना तो दूसरा कहता है जब तक मैं दो नहीं करूंगा ना इसके साथ, इसने एक थप्पड़ मारा मैं जब तक दो ना मार लू मुझे कहाँ चैन आना, उसने एक गाली दिया ना मैं 10 सुना के जाऊंगी इसको, तो नहीं, ये कानून है कि जो भी ज्यादती करे, ये सिर्फ जंग की बात नहीं हो रही, आम जिंदगी में भी जितना कोई आपके साथ करे उतना सिर्फ अब ये भी जहन में रखना चाहिए ना, देखें एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने कहा था मेरा गुलाम है वो मेरे चोरियां करते हैं मेरे माल में से, तो फिर मैं उनको बड़ा मारता आरता हूँ ये करता हूँ, तो मेरा अल्लाह के पास क्या मामला होगा, वो फिक्र भी होती थी ना उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन ऐसे होगा कि जो वो तुम्हारे साथ ज्यादती करते थे, जो हमारा माल लूटा जो भी किया, वो एक पलड़े में होगा, और जो तुम उनको मारपीट करते थे दूसरे पलड़े में होगा। अब जो वजनी हो गया फिर उसको फिर पे करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ना, अगर तुम्हारी मार ज्यादा बढ़ गई उनकी चोरियों से तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, और उनकी चोरियां बढ़ गई तो उनको पे करना पड़ेगा। तो वो इतना डर गया कि उसने उनको आजाद कर दिया अपने गुलामों को। तो इसी तरह है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, आप कहते हैं ठहर जा मैं बताती हूँ इसको, अब आपने उससे भी ज्यादा बढ़ के बदला ले लिया, तो जालिम कौन हो गया? पहले आप मजलूम थे जब तक वो आपको कुछ कह रहा था, अब आप जालिम बन गए जब आपने इतना बड़ा बदला लिया कि उससे भी डबल कर दिया जो उसने किया था। और अक्सर ऐसा होता है अक्सर, ओके हम जब गुस्से में आते हैं या ज्यादती पे उतरते हैं ना, तो हम वे नहीं कर पाते कि उसने कितना किया और मुझे कितना करना। वो जो रेज अंदर से आती है ना, वो जो गुस्सा अंदर से आता है, और ये कि उसने किया क्यों ऐसे और मेरे साथ इसने ऐसे किया, वो जो आपको उबाल आता है ना, वो उस ज्यादती पे उभार ही देता है, ज्यादती हो ही जाती है। तो इंसान को सिर्फ इजाजत उतनी है जितनी उसके साथ ज्यादती हुई है। जिंदगी में कहीं पे भी देख लें, आप किसी रिश्ते में भी देख लें, आप कहीं पे भी माफ करना दरगुजर करना वो आला अखलाक है, वो अंबिया का अखलाक है। लेकिन अगर किसी को बदला लेने का बहुत भी हो तो सिर्फ उतना ले सकता है, बस इससे आगे नहीं। अब आप देख लें कि फिर हम क्या करते हैं। आप ऊपर के लेवल का देखें, इतने ऊपर के लेवल पे जहां पे जंगें हो रही हैं वहां तक भी ज्यादती की इजाजत नहीं है, जहां पे काफरों के साथ जंग की जा रही हो, जहां पे एक तरफ मोमिन और वो हक पे हैं और उनको सताया गया है, उनको भी कहा गया नहीं लेकिन ज्यादती नहीं करनी। और कहां ये कि हम घर घर में आज ज्यादतियां हो रही हैं, अपने घरों के अंदर हम जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर नहीं कोई पकड़ होगी। अल्लाह का कानून तो जंगों के लिए भी वही है और घरों की जंगों के लिए भी वही है, चाहे मुल्कों की हो चाहे खानदानों की हो। तो फिर आप बताइए कि फिर इसके बाद हम कहाँ खड़े होते हैं और ज्यादतियों में हम किस हद तक बढ़ जाते हैं। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह को पता है ना, जब आमने सामने लड़ाई झगड़े होते हैं, मैदाने जंग हो या घर का मैदाने जंग हो, तो फिर जज्बात, फिर जुबान, फिर हाथ, ये काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वही करेगा जिसके अंदर अल्लाह का डर हो। और यही फर्क है एक मोमिन में और गैर मोमिन। मोमिन अल्लाह से डरता ही रहता है चाहे वो जंग में ही हो, जैसे मैंने आपको हज़रत अली की मिसाल बताई, वो उतना ही बदला लेता है जितना कि उससे साथ ज्यादती हो। जबकि जो गैर मोमिन होता है ना, जिसमें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, वो उसको याद ही नहीं रहता कि कोई खुदा भी है जो मुझे देख रहा है, उस वक्त नहीं उसको याद रहता, वो जुनूनी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं ना, गुस्से में भी पागल हो जाना, जंगी जुनून तारी हो गया इस पे, उसको जुनून कहते हैं ना। इसलिए इंसान में कोई कोई सेंस ही नहीं रहती कि वो कर क्या रहा है, क्या क्या रहा है। तो ये मोमिन नहीं होता। ऐन जंग के जर जब ज्यादती का बदला लिया जाए ना, उस वक्त भी कहा गया वत्तकुल्लाह, सुभान अल्लाह, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, ये याद रखना अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं होगा ना, तो तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी। डरते रहना अल्लाह से, ये याद रखना अल्लाह मुझे देख रहा है, तुम्हें अल्लाह ताला की नजरों का एहसास होना चाहिए, और ये सोचना कि मैंने कोई मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए कि मैं अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं, ये है तकवा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि तुम तो अल्लाह की हदों को क्रॉस करते जाओ फिर भी अल्लाह तुम्हारा ही साथ देता जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह जालिमों के साथ नहीं होता, चाहे हम कहें ओ हम तो मुसलमान हैं, हम तो जो मर्जी करते रहे, हम तो जितना मर्जी जुल्म कर लें, किसी ने हमारे साथ एक किया हम 10 करेंगे इसके साथ, और फिर भी अल्लाह की मदद हमारे साथ ही होनी चाहिए ना, क्योंकि हम कलमे वाले तो हम हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो तुम्हें कहा था कि तुमने नहीं करना उससे ज्यादा जितना तुम्हारे ऊपर ज्यादती की गई, फिर तो जालिम में और मजलूम में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो ये आसान मामला नहीं है, ये अल्लाह की कानून है, उसकी हदें हैं, इनको भी तो सोचो, ये भी तो तुमने ही माननी है। अगर तुम इनको नहीं मानोगे तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह माल मुत्तकीन है, उनके साथ है उसकी मदद, वो उनके साथ है। وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। खर्च करना यानी जब अल्लाह ताला के दीन की बात आए, ये कॉज हो जिसमें दीन की नशरो इशाअत हो, जिसमें दीन के लिए कोई काम करने के लिए हो, चाहे उसकी नशरो इशाअत की जाए, चाहे उसके लिए लड़ना हो, चाहे उसके लिए यानी किसी तरह के भी अल्लाह ताला के दीन को जब मदद की जरूरत हो, चाहे वो कोई मस्जिद बनानी है, चाहे कोई मदरसा बनाना है, चाहे आपने कोई मटेरियल आगे लोगों को देना है जिससे अल्लाह ताला की पहचान उनको हो, दावा कोई कोई काम करना है, इसके लिए सबके लिए कोई पैसों की जरूरत ही होती है ना। तो इन्फाक करो अल्लाह के रास्ते में, और वला तुलकू भी ऐदी को मिलत तहलु का, और ना तुम डालो अपने हाथों को यानी अपने आप को, मतलब क्या है हाथों को कहने से, मतलब कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी तुम हलाक हो जाओगे अगर तुम नहीं करोगे ये इन्फाक। क्यों हलाक हो जाओगे तुम? हलाकत में डालने का मतलब ऐसे अपने आप को किसी आग के गड़े में डाल देना, किसी जगह से ऊंची जगह से नीचे फेंक देना, हम उसको कहेंगे इसने अपने आप को खुद हलाकत में डाल दिया, ऐसा ही है ना। तो इन्फाक ना करने से कैसे हलाकत हो जाएगी? इसलिए कि जब आप अल्लाह ताला के दीन की खातिर नहीं खर्च करेंगे, तो देखें दीन की जो दूसरे लोग हैं उनको तो दीन में बुलाना तो दूर की बात है, आपके जो अपने मुसलमान हैं उन तक भी कोई इल्म ना पहुंचेगा, ना उनको अपने दीन का कोई पता होगा, ना उनके पास कोई जगह है जहाँ के ऊपर वो जहाँ बैठ के वो अल्लाह के दीन की कोई बात कर सके, ना उनके पास कोई जगह है जहाँ पे कोई नमाज पढ़ सके या कोई सीख सके, कुछ सिखा सके, दीन की बातों की मालूमात हासिल कर सकें, ना कोई वैसा मटेरियल है। अगर सब लोग ऐसे करने लगे और कह रहे हैं और कह सोचें ये कि कोई बात नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो, क्योंकि ये दीन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वो जो आज हुआ है, ना दीन सीखा गया, ना सिखाया गया, ना इसके ऊपर खर्च हुआ, मदारिस की हालत इतनी बुरी, वो ऐसे रिमोट एरियाज में जहां तक कोई जा ही नहीं सकता, वो तो फिर क्या हुआ, लोग अल्लाह के दीन से नावाकिफ रह गए ना। जब दीन पे खर्च नहीं किया जाएगा, जब यूनिवर्सिटीज और ये तो इतनी मॉडर्न और इतनी बड़ी और जबरदस्त, और अल्लाह के दीन को सिखाने की जगह कैसी, जब मस्जिदों की हालत इतनी मखदूश, वहां पे फटे हुए कारपेट बिछे हुए हैं, जहां नमाज़गों की हालत क्या है, छतें टपक रही हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो वो फिर बताएं क्या हाल होता, क्या हाल होगा ऐसे फिर दीन का, वो तो एक बेचारगी का दीन ही होगा ना। और अगर नहीं खर्च करेंगे तो अपने मुसलमानों का भी मुसलमान रहना मुश्किल होगा, याद रखिए। और आज ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम खर्च करें ताकि, और सही जगह पे खर्च करें ताकि दीन की नशरो इशाअत हो, नशरो इशाअत समझते हैं, ये दीन का काम आगे बढ़े, ताकि हम इन मुसलमानों को समझ हो। देखिए ना, अब ये ना मसलन पढ़ा पढ़ा जा रहा तो हर बार कंफ्यूजन ही रहेगी ना, पता नहीं क्या बात है, लड़ने का क्या चीज है, ये इल्म ना आगे सिखाया जाए, ना इसके लिए कोई कोई जरिया ही ना हो, तो क्या होगा फिर? दीन को भी जरूरत है कि इसके ऊपर खर्च किया जाए, और सिर्फ खर्च करना माल ही नहीं, बाज जगह के ऊपर आपका वक्त जो होता है वो खर्च करना जरूरी होता है। देखिए तीन ही चीजें हैं ना, एक जान दे देनी अल्लाह के रास्ते में, एक माल दे देना अल्लाह के रास्ते में, और एक है वक्त दे देना अल्लाह के रास्ते में, इस जिंदगी को लगा देना अल्लाह के रास्ते में, ये तीन ही चीजें आप खर्च कर सकते हैं। अब इनमें बहुत से लोग माल लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं वक्त नहीं लगा सकते, वक्त देने को कोई भी तैयार नहीं, तो माल का क्या करेंगे आप? आप एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दें, वो आएगा ही नहीं वहां पे, तो क्या होगा? तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खर्च करो अल्लाह के रास्ते, वरना हलाकत में पड़ जाओगे, आगे की जनरेशन तक दीन कैसे पहुंचेगा बताएं, तो हलाकत है ना फिर, ये अपने आप को हलाकत में डाल देना है अगर नहीं खर्च किया तो। वह आहसिन हो और एहसान करो, यानी ये जो तुम स्पेंड करोगे ना ये भी बेहतरीन तरीके से स्पेंड करो, ये नहीं कि बिल्कुल रद्दी चीजें या बिल्कुल ऐसे ही कि बस सर से उतारने वाला काम, नहीं, ब्यूटिफुली ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے. اب آگے آ گئی حج اور عمرے کی بات، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج اور عمرے کے اندر کوئی مسائل آ جائیں تو ان کو کیسے پھر سالو کیا جائے. سب سے پہلی بات، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، کس کے لیے؟ لِلَّهِ، تمام کرو یعنی پورا کرو حج کو اور عمرے کو، یعنی اس کے پورے مناسک کرو، ساری چیزیں اس کی کمپلیٹ کرو. جب ایک دفعہ چل پڑے ہو تو اس کو پورا کر کے ہی آؤ گے، بات سمجھ آ گئی. اور یہ صرف اس کے لیے ہی نہیں ہے، دوسری بھی زندگی کی جتنی چیزیں آپ دیکھیں نا، اگر آپ ان کو پورا نہ کریں، آپ ایک کھانا بنا رہی ہیں آپ نے پورا ہی نہیں کیا، آدھا گوشت کچا، آدھا پکا، آدھا مسالہ بھنا، آدھا نہیں بھنا، ویسے چھوڑ کے چلی گئی، تو وہ کسی کھانے کے قابل رہے گا؟ تو کوئی بھی زندگی کا کام اگر آپ اس کو مکمل ہی نہیں، آپ اپنی جاب، آپ کو کسی نے جاب کے لیے ہائر کیا، آپ نے وہ پروجیکٹ ہی نہیں پورا کیا، کیا ملے گا آپ کو اس پہ؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح معاملات عبادات کے بھی ہیں، اسی طرح جو بھی کام آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا نیکی کا، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. آپ دنیا کے معاملے میں سوچتے ہیں نہیں کمپلیٹ کرنا ہے، میں جاب کمپلیٹ کر کے آؤں گی، جو لوگ ریسپانسیبل ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے نا. تو پھر کیوں نہیں دین کے معاملے میں ہم یہ سوچتے کہ کمپلیٹ کرنا ہے؟ اب جیسے روزوں کا بھی آیا کہ اگر کوئی مریض ہے اور سفر پہ ہے تو وہ کمپلیٹ کرے اپنی عدت، گنتی کو پورا کرو دوسرے دنوں میں، یعنی پورا اس میں بھی کرنا ہے. کسی وجہ سے رہ گیا تھا اس وقت اگر رمضان میں، بعد میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے میں اس لیے اتنا زور دے رہی ہوں کہ بعض لوگ بہت شوق سے ان کورسز میں آتے ہیں، بڑا جوش آیا کسی دن کوئی درس سن لیا، اب آ تو گئے، اب کسی دن کوئی ٹیسٹ میں مسئلہ ہو گیا، ٹیسٹ دینا مشکل لگ رہا ہے، یا کوئی گروپ میں جانا مشکل لگ رہا ہے، یا کچھ یاد کرنا میں مسئلہ ہو گیا، ہائے ہائے یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. نہیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. جو کام بھی اللہ کی خاطر کریں، دیکھیں ہم اللہ کی خاطر یہ سیکھ رہے ہیں نا، اب اس میں مشکلات بھی آئیں گی، کوئی ہرڈلز بھی آئیں گی، وہ مسئلے بھی آ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کے بیٹھنا یہ سلوشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو ریگولرلی کیا جائے، مسلسل کیا جائے. اور عبادات میں دیکھا کتنی تاکید سے یہاں پہ کہہ دیا، اتمو، پورا کرو حج اور عمرے کو. نہیں، اللہ تعالیٰ انکمپلیٹ چیزوں کو نہیں پسند کرتا، کیا ادھوری ادھوری چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم کیا ایک پارا پڑا اس کے بعد چھوڑ کے بیٹھ گئے جو بھی فار واٹ ایور ریزن. نہیں، جب آپ شروع کریں تو سوچیں کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. بعض لوگ 10 کام شروع کر لیتے ہیں، ایک بھی نہیں ان میں مکمل ہوتا، ادھر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی کورس لیا ہوا ہے، ادھر بھی کیا ہوا ہے، کار ایک بھی نہیں صحیح سے سکتے، تو ایسے کا کیا فائدہ مجھے بتائیں، ایک بھی مکمل نہ ہوا. اس سے بہتر نہیں کہ آپ جو شروع کریں اس کو کم از کم پایہ تکمیل تک پہنچائیں. جب ہم دنیا میں نہیں یہ پسند کرتے کہ کوئی کام شروع کیا جائے اور اس کو کوئی ادھورا چھوڑ کے چلا جائے، آپ کے گھر کوئی صفائی والی آئی ہے وہ آدھا کام کرتی آدھا چھوڑ کے چلی جاتی، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہم دنیا کے کاموں میں اپنے لیے نہیں پسند کرتے، اور اللہ کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو ادھورے ادھورے ہیں، جس میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ پورا کرنا، یا حج کے لیے نکلے اس کو پورا کریں، عمرے کے لیے نکلے اس کو کمپلیٹ کریں، اور کس کے لیے کریں؟ للہ، صرف اللہ کے لیے. فَإِنْ أُسِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 6 ہجری میں عمرے کے لیے نکلے تھے، اور آگے کافروں نے کہا کہ نہیں آپ اس سال نہیں کر سکتے، آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے، تو واپس کر دیا گیا. اب اللہ کا تو حکم ہے نا کہ پورا کرنا ہے آپ نے، لیکن اگر ایسی کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، مثلا آج کے حالات میں ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے کہ نہیں اس وقت آپ کو وہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، آپ نہیں جا سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے عمرے حج کے لیے، حالانکہ آپ کے پاس ویزا بھی ابھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، سب ہے، لیکن اتھارٹیز نے آپ کو نہیں جانے دیا، ایئرپورٹ سے واپس کر دیا. اب آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، آپ نے نیت بھی کر لی ہوئی ہے، تو اب کیا کریں؟ یہ تو کچھ ہونا چاہیے نا یار، اللہ نہ کریں کہیں جا رہے تھے پھر احرام بھی باندھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نکل پڑے اس سفر پہ، تو اب کیا ہے؟ اب آپ ایسے کہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے آپ پہنچ ہی نہیں سکے وہاں پہ، یا وہاں پہنچے تو ایسے بیمار پڑ گئے کہ آپ جا ہی نہیں سکے عرفات تک، یا آپ عمرہ ہی نہیں کر سکے یا حج نہیں کر سکے، تو پھر کیا کرو؟ فمستئی سرمن الحدی، تو جو بھائی میسر آئے قربانی کر، قربانی कर दो। तो यानी जो भी बंदा ऐसे किसी वजह से रोक दिया जाए, वो निकला था हज के, उससे उसने आराम पहन लिया था, तो अब रोक दिया गया, तो अब कुर्बानी करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप आराम से घर आ जाएंगे। वला तहलिकु रुउसकुम हत्ता यबलू अल हदी महिल्ला, और ना तुम मुंडाओ अपने सरों को यहां तक कि पहुंच जाए कुर्बानी अपनी हलालगाह को। यानी अब आपने जो कुर्बानी दी है वो आप क्या करेंगे, अब आपने जब तक कुर्बानी अपनी हलालगाह तक ना पहुंच जाए, यानी अगर हज है तो वह मीना में पहुंच जाए और वहां पे कुर्बानी हो जाए, किसी को आप कह दें कि वहां पे कुर्बानी कर दे आपकी तरफ से, या उम्रा है तो आपने कुर्बानी वहां पे भेज दी, जब तक वो अपनी जगह पे ना पहुंच जाए, वहां पे कुर्बानी ना हो जाए, उस वक्त तक सर ना मुटाओ, ये कहा गया। यानी एहराम से निकलने के लिए ये है, ये एहराम से निकलने के, ऐसे ही नहीं एहराम से की पाबंदियों से निकल सकते, क्योंकि एहराम बांध लिया है ना एक दफा, तो अब या तो पूरा करें, अब हो गई बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी, इंसान के कंट्रोल में ही नहीं है, अब वो इरादे से तो गए थे, अब आज के हालात में देखें इरादे से निकले, एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया, बेचारे वो क्या करें। तो अब ऐसे ही नहीं वो आराम, अगर उन्होंने आराम बांध लिया, अगर तो वहां तक मीका तक पहुंचे ही नहीं, आराम ही नहीं बांधा, या अभी नियत ही नहीं की थी, तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने आराम में आ गए हैं, नियत कर ली है, तो अब वो वेट करेंगे जब तक के वहां पे कुर्बानी ना पहुंच जाए, फिर वो अपना सर मुंडा ले मर्द जो है। तो इससे पता चलता है ऐसे ही नहीं है हालत आराम से निकला जा सकता। अब वो पता है ना आदमियों के लिए तो आराम के कपड़े भी होते हैं, लेकिन हालत आराम एक अलग चीज है, आराम सिर्फ कपड़े नहीं है, हालत आराम मतलब है औरतों ने चाहे कोई खास लिबास नहीं भी पहना हुआ, लेकिन उनके ऊपर भी पाबंदियां तो है ना वो आराम की, तो वो उन पाबंदियों को, उन रिस्ट्रिक्शन से निकल नहीं सकती जब तक ये नहीं करें। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम में रासी ही, तो जो कोई तुम में से मरीज हो, यानी किसी को पहले बाल काटने पड़ जाए, अभी हदी महिला तक पहुंची ही नहीं है, या वो मरीज हो, उसको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी अजियत लाहक हो जाए किसी को, जिसकी वजह से उसको अपने सर मुंडाना पड़े, अब अजियत के अंदर किसी को जुएं पड़ सकती हैं, उसको सर मुंडाना पड़ा, या कोई ऐसा किसी का सर में मसलन कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने सर के अंदर कोई स्टिचेस लगाने हैं, वो बाल वहां से उतारते हैं स्टिचेस लगाने के लिए, तो फिर वो क्या करे, फिदिया तुम मिन सियामिन औ सदकतिन औ नुसुक, तो फिर तीन में से एक ऑप्शन है उसके पास, फिर या तो रोजे रखे, रोजे कितने रखे, तीन रोजे, ये हदीस से पता चलता है, या फिर सदका कर दे, कितना सदका करे, अपनी मर्जी से नहीं, हदीस से पता चलता है, 6 मिसकीनों को खाना खिला दे, या फिर एक कुर्बानी कर दे अल्लाह के रास्ते में, एक बकरी दे दे बस। तो इससे पता चलता है कि अपनी मर्जी से नहीं जाके आपको भी आराम पहन लें, कभी आराम से निकल आए, कभी कुछ कर लें, अपनी मर्जी से नहीं ये चीजें कर सकते। फाइदा अमिन तुम, फिर जब अमन में आ जाओ, यानी अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, अब जो रुकावटें थी अब उन्होंने खोल दिया है हज उमरे वालों के लिए रास्ता, अब कोई रुकावट नहीं, या इंसान अगर बीमार हो गया था तो अब वो तंदुरुस्त हो गया है, या जो भी उसकी रुकावट थी जिसकी वजह से वो पहले नहीं जा सका था, तो अब हालात ठीक हो गए हैं, तो अब फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो कोई फायदा उठाए उम्रे का हज में, यानी हज तक जो कोई उम्रा करे, एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जाहलियत के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जब कोई लोग हज के लिए जाते थे ना, तो उम्रा नहीं करते थे, उम्रा करने को वो हराम समझते थे, नाजायज समझते थे, कहते थे हज करने जा रहे हैं और उम्रा भी करके अपना फायदा उठा रहे हैं कि हम इसी के अंदर उम्रा करें, उम्रे के लिए आपको अलग जाना चाहिए, ये नहीं कि आप हज के अंदर ही उम्रा कर लो, तो फिर क्यों उम्रे की वैल्यू रह जाएगी, आपने तो उसका पार्ट ही बना दिया। तो अल्लाह ताला ने बाद में इस चीज को खत्म कर दिया, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी बड़ी सहूलत कर दी कि अब जो कोई वहां का रहने वाला है ना, जो जो कोई यानी मक्का का रहने वाला है, वो तो सिर्फ हज ही करे, जिसको कहते हैं हज इफराद, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हज इफराद, यानी वो सिर्फ हज करे, वो उम्रा कभी बाद में और करे, हज के साथ ना करे, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं, उन जैसे हमारे जैसे लोग जिन्होंने एक दफा कभी जिंदगी में जाना हो, या बार बार मौका नहीं मिलता हो, या इतना महंगा हज उम्रा हो, या पहले जमाने में इतना मुशक्कत थी, लोग महीनों का सफर कर करके वहां पहुंचते थे और उनको पता नहीं होता था जिंदा वापस आना है या नहीं, आए तो आए वरना नहीं, उनकी कोई खैर खबर ही नहीं होती थी, कौन से कोई फोन थे या कुछ थे, तो लोग चले जाते थे, फिर जब आते थे इसीलिए तो इतनी खुशी मनाई जाती थी कि वो हज से आ गए, वो बहुत बड़ी बात होती थी हज करना। तो फिर अल्लाह ताला ने सहूलत दे दी कि जब दूर से आते हैं उनके लिए मुश्किल है, तो वो उम्रा भी साथ कर ले, उम्रे का भी फायदा उठा ले हज के साथ, तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सहूलत दी ना। अब बेचारे कई लोग कितनी ही मुश्किलों से पैसे जोड़ जोड़ के फिर हज के लिए आते हैं, उनके लिए कहाँ पॉसिबल है कि बार बार उमरे के लिए जाएं। तो उनके लिए भी कितना सहूलत हो गई, यानी आज के वक्त में अगर सहूलियात हैं सफर की, लेकिन इतना महंगा है हर कोई नहीं जा सकता, तो वो हज के साथ ही उमरा कर ले। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो फायदा उठाए ना उमरे का हज तक, यानी जिसमें आप देखें हज तमत्तो में भी आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं, हज किरान में भी आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं, हम सब जो हैं जितने भी सुनने वाले हैं वो सब यही दो करते हैं हज। क्योंकि हमें कोई भी मक्का के अंदर अनलेस आप रहने वाला हो तो फिर वो सिर्फ हज करेगा। तो फमस्त ही सारा मिनल हदी। तो अब अल्लाह ताला ने ये तुम्हें फायदा दे दिया ना कि तुम उमरा भी कर सकते हो हज के साथ, अल्लाह ने तुम्हें ये एक सहूलत दे दी ना, इसके शुक्र के तौर पे अब तुम क्या करो, जो भी कुर्बानी तुमसे मुयसर आए तो करो। इसी वजह से हज इफराद वाले कुर्बानी नहीं वहां पे करते, हज तमत्तो और हज किरान वाले करते हैं। तो ये वहां पे एक हम शुक्राना शो करते हैं कि अल्लाह ताला कि तूने हमें उमरे की भी तौफीक दे दी इसके साथ। फमल्लम यजिद, तो जो नहीं कुर्बानी कर सके, नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, मुश्किलों से तो हज पे पहुंचा है, वो कहाँ कुर्बानी करेगा, तो उसके लिए ऑप्शन है फसियामु सलासती अय्यामिन फिल हज। तो ऐसा करे वो कि 3 रोजे हज के दिनों में रख ले। हज के दिन कौन से? फर्स्ट जिल हज से लेके 9th तक के दरमियान 3 रोजे रखते। वह 7 दिन इदारा जातुम, और 7 रोजे जब हज खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद, चाहे वो वहीं पे रह रहा है तो तब रख ले, चाहे घर आ गया तो तब रख ले, मगर हज के दिन जो ये आमे तशरीक है वो खत्म हो जाए 13 तारीख के बाद, वो किसी वक्त भी कर रख ले। तिल का आशरत उन कामिला, ये टोटल कितने हो गए? 10 रोजे हो गए। ये उसके लिए है, देखिए हर एक के लिए अल्लाह ने सहूलत दी है। जो ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना करें कुर्बान। मतलब कुछ लोग देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मुश्किलों से हज के लिए सफर करके जाते हैं, अब वो उनसे कहते हैं आप कुर्बानी के भी पैसे दें, हो सकता है किसी पास नहीं हो, तो ये ऑप्शन तो किसी को पता ही नहीं होती आज कि अगर मेरे पास नहीं है कुर्बानी के पैसे तो ठीक है कोई बात नहीं कुर्बानी ना करें, फिर वो इस तरह 10 रोजे रख ले। दालिका, ये उसके लिए, लिमन लम यकुन अहलु हादरिल मस्जिद हराम, ये उसके लिए जो मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं है, जिसके घर वाले मौजूद नहीं है मस्जिद हराम में। क्या मतलब है इसका? मतलब वो रेजिडेंट नहीं है वहां का, यानी वहां का रहने वाला नहीं है, वो उसकी फैमिली वहां पे नहीं है, वो मुकीम नहीं है, वो ये कर सकता है कि उम्रे को हज के साथ मिला के कर ले। बात समझ आ रही होगी उम्मीद है, इजी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप हमने क्या बात की कि सब जो आउटसाइडर्स हैं, जो हरम से बाहर के लोग हैं, नॉन रेजिडेंट है वहां के, वो उम्रा और हज साथ कर सकते हैं, जैसे हम सब करते हैं जब जाते हैं, तो हम पहले उम्रा करते हैं फिर उसके बाद हज करते हैं, और वो फिर कुर्बानी करें वहां पे। जो नहीं कुर्बानी कर सकता वो 10 रोजे रख ले, 3 पहले और 7 बाद में। वत्तकुल्ला, और डरो अल्लाह से। देखिए फिर आ गई बात वत्तकुल्ला, इसलिए कि बाज दफा इंसान ना सिर्फ इन रिचुअल्स में पड़ जाता है, ये करना है, रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, सर मुंडाना, ये याद नहीं रहता क्यों कर रहे हो, ये कोई रस्में थोड़ी है जो तुमने सिर्फ निभानी है और बस हो गया। नहीं, सोचो कि हम यहाँ पे क्यों आए, सोचो कि हमारे यहाँ पे से क्या लेकर जा रहे हैं, किस हालत में आए थे और किस तरह हमने जाना है यहाँ से, इन सारे अरकान के पीछे अल्लाह हमें क्या सिखाना चाह रहा है, सब चीजें हैं। आलमो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा भी देने वाला है, यानी अगर अल्लाह की हदों को तोड़ोगे ना, जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं वो, इनको लाइटली ना लो कि हमें कोई डर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी करूं, ये नहीं होगा। याद रखना फिर अल्लाह सजा भी सख्त देने वाला है, और हमें ये समझना चाहिए कि जब हम हज उमरे के लिए जाएं तो हमें ये अहकाम पता हो ना, कि हम अपनी मर्जियां करते रहे। अलहजु अशहुरु मालूमात, हज के जो है ना महीने वो मालूम है, इसका मतलब हज के भी कोई महीने, आपको पता है उम्रे का तो कोई महीना नहीं, आप कभी भी साल भर में जाए उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हज के स्पेसिफिक महीने हैं, आप उसके अलावा अपनी मर्जी अपनी कन्वीनियंस से जाके हज नहीं कर सकते। और हज के महीने कौन से हैं पता है आपको? शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा, ये 3 महीने हैं, ज़िलहज्जा के भी 10 दिन पहले के, तो ये 2 महीने और 10 दिन हैं जो हज के महीने। अब इनके अंदर क्या मतलब है कि हज के महीने, मतलब ये है कि फर्स्ट शव्वाल को अगर कोई एहराम बांध के चल पड़ता है ना, मीकात पे एहराम बांध लिया उसने, नियत कर ली, तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रमजान की 29 तारीख को या रमजान में ही चल पड़े वो हज करने के लिए, और रमजान में ही उसने एहराम बांध लिया, नियत कर लिया, तो उसका हज नहीं होगा। हज सिर्फ अगर ये फर्स्ट शव्वाल से आगे फर्स्ट सवाल से शुरू होते हैं ये टाइम, सिर्फ इसके अंदर वो यानी शवाल है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा के शुरू के दिन है, इनमें सिर्फ वो अगर एहराम बांधता है और नियत करता है हज की तो तब उसका हज होता है। बात समझ आई? फमन फरद फीहन अल हज, तो जो कोई फर्ज करे इनमें हज को, क्या मतलब है इसका फर्ज करे, यानी जिसने अपने ऊपर फर्ज कर लिया। फर्ज अपने ऊपर कैसे हो जाता है? वो ऐसे हो जाता है कि जब इंसान, जैसे यहाँ पे कहा गया ना वतिमुल हज वल उमरा तलिल्ला, जब इंसान मीकात पे आए और वो एहराम बांध लेता है, वो नियत कर लेता है ना हज की या उमरे की, तो यहाँ पे तो हज की बात आ रही है, जो हज की जिसने नियत कर ली तो उसने अपने पर फर्ज कर लिया अब हज, अब उसको लाजमी हज करना है, उसको पूरा करना है हज, ये ऐसे नहीं जा सकता वो। बात समझ आई कि अब मेरा मूड बदल गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बात कह रहे हैं कि अब तो मैं जा रहा हूं या अब नहीं मैंने करना, नहीं अब उसके ऊपर फर्ज हो गया हज, तो अब उसके लिए ना तीन पाबंदियां लगाएंगी। आपको पता है ना एहराम की पाबंदियां, तो आपको पता होंगी खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने हैं, ये नाखून नहीं काटने हैं, इस तरह की कई पाबंदियां एहराम की, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक तीन पाबंदियों का जिक्र किया गया कि हज में याद रखना। ये आपको पता है हज का जो एहराम होता है ना वो तो जरा लंबा होता है, उमरे का एहराम तो थोड़ी देर में चंद घंटे में उमरा हो जाता है, तो वो तो आप मतलब एहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन हज की ज्यादा लंबी होती है, कई दिनों की बात होती है। अब उसके अंदर तीन काम नहीं करने हैं जो कान खोल के सुन ले, क्योंकि हज पे जाने वालों को ये पता ही नहीं होता। नंबर वन, फला रफता, कोई भी ऐसी मियां बीवी की जो शहवत की बात होती है, मियां बीवी नहीं कर सकते तो किसी और के साथ तो दूर की बात है ना, वो तो बिल्कुल भूल ही जाए, मियाँ बीवी जहां पे जायज है वो फिजिकल रिलेशनशिप करना तो दूर की बात, वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसी हिंट देना आदमी औरत का एक दूसरे को जो इससे मुतल्लिक हो सेक्सुअल बात से, वो भी ममनू है, नहीं करना। समझ आ गई बात? ये कोई ऐसी बात नहीं, क्यों ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई? ताकि इंसान का ध्यान अल्लाह की तरफ रहे, ना कि इन चीजों में पड़ा रहे, ठीक है? तो फला रफसा, ये तो इजी बात हो गई। वला फुसूका, और ना ही कोई गुनाह का काम, कोई गुनाह का काम नहीं कर सकते। गुनाह का काम आप कैसे होगा? अब गुनाह के काम में ये देखे ना, अब आप मीना में, आपके पास बहुत दिन है मीना में, टेंट में बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा करने का काम भी नहीं है, कोई बहुत नमाजें भी नहीं है, कोई बहुत कुछ कहीं जाना भी नहीं आना भी नहीं, अब बैठे हुए क्या, वो रमी करनी थी वो करके आ गए, अब 11 12 13 10 से सिर्फ बैठे हुए, 10 11 12 13 आप वहीं पे हैं। अब इन 4 दिनों में कुछ और तो मशगला है नहीं, तो अब क्या होता है, औरतें आपस में बातें शुरू करती थी, फिर इधर की बातें उधर की बातें, फिर उसकी गीबतें उसकी चुगलियां उसकी ये, कभी कुछ बात कभी कुछ, तो ये चीजें वहां पे अलाउड नहीं है, या तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है जहां पे भेजा हुआ है, वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी, और वहां पे जाके ये शुरू कर दिया। तो कोई फुसूक की बात नहीं करनी, कोई गुनाह की बात नहीं करनी, ये सब गुनाह की बातें ही है। इसी तरह झूठ हो गया, इसी तरह अब अपने फोन्स के ऊपर लोग लगे हुए हैं, तो फोन पे कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ गुनाह की चीज देख रहा है, कुछ बात कर रहा है किसी से जिसमें कोई झूठ है, जिसमें अब व्हाट्सएप वहां पे भी चल रहा है, वहां पे भी सारी दुनिया के साथ राबते के अंदर है, अब क्या करें, वक्त तो काटना है ना किसी तरह। जब अल्लाह के जिक्र की आदत घर में नहीं होती ना इतनी करने की, तो वहां पे भी जाके कोई हम फरिश्ते नहीं बन जाते, वहां पे जाके कोई हमें ऐसा नहीं हो जाता कि हम एकदम बहुत नेक बन गए अब मीना में आते, अब वो आते कहाँ जाती हैं, अब वो जो एडिक्शन फोन की है वो वहां पे भी नहीं जाती, वहां पे भी फोन निकाली है वही काम वहां पे शुरू कर दी, जैसे यहाँ पे देखते थे जैसे यहाँ पे चिट चैट थी वैसे वहां पे भी कर रहे हैं। तो वो ये वक्त है कि जिस वक्त इंसान को ये समझना है कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पे, इसीलिए तो बार बार तकवा का आगे ना आगे भी आएगा, मैं क्यों आई हूं यहाँ पे, मुझे ये समझना है मैं किस पर्पज के लिए आई हूं यहाँ पे, ये काम नहीं मैं कर सकती, तो पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाना है। फिर वहां पे इतनी मिक्सिंग होती है मर्दों की औरतों की, जितनी कि आप यहाँ पे कभी भी उस तरह से मिक्सअप नहीं होते आदमियों के साथ, आदमी सामने से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, मर्दों की नजरों अगर औरत पे पड़ गई है तो वो अपनी नजर हटा ले, तो कोई किसी किस्म का फुसूक ना हो, बाज दफा इन अवॉइडेबल हो जाता है मर्दों से, साथ साथ वो चल रहे होते हैं साथ, तो उस वक्त भी जो चीजें इन अवॉइडेबल हैं वो तो आप आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके फिर और क्या नहीं करना, जिदाल नहीं करना, जिदाल झगड़े। अब झगड़े तो बहुत होते हैं, झगड़े कैसे होते हैं, बहसें हो रही हैं, कभी तो फिकही बहसें शुरू होती हैं कि हमारे तो वो कैसे कहते हैं, हमारे तो इमाम ने हमें ये कहा है, हमने तो जमा नहीं करके पढ़नी नमाजें, हमने तो ऐसे नहीं करना, कभी बाथरूमों में झगड़े हो रहे होते हैं, तुमने पानी क्यों यहाँ पे फेंक दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, कभी कुछ हो रहा है, तो तरह तरह के झगड़े, तरह तरह की बातें, गुस्से हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये नहीं, जगह किसी ने किसी की ले ली तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, इस तरह का कोई काम भी नहीं किया जा सकता वहां पे। इसलिए ये तीन चीजों को तो पल्ले बांध ले, अगर एहराम की हालत में इस तरह के कोई काम हो जाता है, मसलन है कि किसी से रफस हो गया, तो अब उसका तो गुनाह तो उसके ऊपर है ही है, जो अल्लाह ताला की हद को उसने तोड़ा है, फिर इबादत का सवाब भी खत्म हो गया, फिर उसको ये दोबारा हज रिपीट करना पड़ेगा, उसको फिदिया भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मामूली बातें नहीं है। इसीलिए तो है ना कि हम शऊरी हज किया करें, वो हज नहीं कि बस अब हमारे पास पैसे आ गए तो हज को जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बस हज तो करना ही है ना, तो हज भी एक रसम ही रह गई है, तो हज हो गया बस हमारा, सर से उतारने वाली एक चीज, वो नहीं होना चाहिए, समझ के जाना चाहिए कि हज क्या है। वमा तफालु मिन खैर यालमुल्लाह, और जो भी तुम नेकी करोगे ना, लेकिन जो चीजें ममनू है ना उनका तो बता दिया गया कि ये तीन चीजें ममनू है, तो फिर अब इंसान कहता है फिर करें क्या, कुछ भी नेकी करो, अल्लाह उसको जानता है, नेकी के तो वहां पे बहुत मौके होते हैं, आप अल्लाह का जिक्र करें, आपके पास कितनी फरागत होती है, आप कुरान को पढ़ें, आप कोई दूसरों को कुछ सिखा दें, नहीं तो किसी से सीख लें, नहीं तो किसी की हेल्प कर दें, बहुत लोग हेल्प कर चाहते हैं वहां पे, नहीं तो कोई बीमार है उसकी कोई तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ कर दें, नहीं तो किसी को आप वैसे ही किसी को दिल अच्छा कर दें, उसको कुछ चाय पिला दें, उसको कोई खिदमत कर दें, कोई और पानी ला के दे दें, किसी कोई भी हेल्प कर सकते हैं आप, तो दूसरों की वहां पे हेल्प भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ, कोई अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं, कोई इल्म की बात की जा सकती है, कोई और अपने ऊपर कोई मुहासबा अपना किया जा सकता है, घरों में बहुत काम होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वहां पे भी जाके कोई खैर का ही काम ना करें, कि बस सोए रहें या फिर फुसूक और जिदाल में पड़े रहे, तो फिर वहां जाके भी क्या किया। तो कहा गया यालमुल्ला, खैर का जो भी काम करोगे ना, चाहे हज में चाहे यहाँ पे, हमें ये बहुत फिक्र होती है लोगों को पता चले चला के नहीं, इवन हम किसी को कोई अच्छा मशवरा दे दें, मिसाल के तौर पे अच्छा मशवरा आपने किसी को दिया, उसने वो कोई काम कर लिया, अब लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, अब आपको ये हुआ कि हाय लोगों को ये तो पता नहीं चला कि ये इसका आइडिया तो मैंने ही दिया था ना, कैसे पता चले लोगों को, अब आप सारों को बताते जाते हैं, देखो आइडिया वैसे ये मेरा था, मैंने ही इसको कहा था करने को, क्योंकि आपको ये हो रही है कि अभी इसको तो तारीफ हो गई, अब मेरा क्या बनेगा, मेरा तो किसी ने भी नहीं तारीफ की, मेरा तो किसी को पता ही नहीं चला, तो तुमने जो भी किया है या अल्लाह, कभी हम ये भी सोचा करें जब कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं ना, किसी को भी नहीं पता चल रहा ना, अल्लाह तू देख रहा है ना कि मैं ये कर रही हूँ, अल्लाह से बात किया करें, उसको बताया करें, अल्लाह तूने देख लिया ना मैंने ये कर लिया, कितनी खुशी होगी फिर, और वो नेकी सेव हो जाती है, वरना नेकी जाया हो सकती है, तो ये जो शौक है ना दिखाने का कि हाय इनको तो पता ही नहीं चला कि ये खाना मैं लेके आई थी, सबने खा भी लिया, लो अब कैसे पता चलेगा उनको, हम किस तरह बताएं, ये चीज मैंने बनाई थी किसी ने पूछा ही नहीं, अब कैसे इनको पता चले, इनको तो इन्होंने समझा कि सारा दूसरे ने किसी ने बनाया, ये तो मैंने बनाया था, अब कैसे बताऊं, ये इतनी छोटी छोटी चीजों में भी ना हमें इतनी ये हो जाती है कि हाय मेरा नहीं पता चला किसी को, ये जो शौक है ना इसको हमने खत्म करना है कि मेरा क्यों नहीं पता चला किसी को, बस कहीं अल्लाह को पता चल गया ना। वत्तकूनी, अच्छा नहीं अभी पीछे का रहता है, वत्तज़व्वदु फइन्ना खैरज़ादित तक्वा, ये मैं बात कहना चाह रही थी कि ठीक है वहां चले तो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वहां पे तकवा भी तो लेके जाना है, सारा सामान रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ज्यादा फिक्र ये भी होगी कि वैसलीन भी रख ली कि नहीं, सेफ्टी पिन रखी कि नहीं, हिजाब में लगाने के लिए ये वाला हिजाब रखूं कि वो रखूं, कि वो सॉक्स रखूं कि ऐसी रखूं, जूते कौन से पहनने हैं मैंने, ये सब चीजों का इंतजाम है। लेकिन ये नहीं सोचते कि सबसे बेस्ट चीज जो ज्यादा राह है, जो ले जाने का सामान है, जो वहां पे चीज की, जिस सामान की सबसे ज्यादा जरूरत है वो तकवा है, उसकी तरफ ध्यान भी दो, वो भी तो लेकर जाओ कि अल्लाह का डर, ये चीज, ये शौक कि मैं नेकी करूं, ये भी तो लेके जानी है। ये भी खौफ कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई फुसूक, जिदाल, रफस, इनमें से ना कुछ हो जाए मेरे साथ। और जिदाल अक्सर जो है ना, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अच्छी तो नहीं मतलब सही बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं पे भी ना मियां बीवी की लड़ाई हो तो वहां जाके जरूर हो जाती है। अब गए हुए वहां पे मेरे ख्याल फरागत ज्यादा होती है, तो जब एक कमरे में भी होंगे तो तब भी मसला है। तो वो कह रही कि वो एहराम, एक तो एहराम में वैसे ही नहीं झगड़ा कर सकते, अब हज के दिन है तो वहां पे कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, रमी करने जा रहे थे कहीं, वहां जा रहे थे तो लड़ाई हो गई, तो लड़ाई तो किसी से भी नहीं करनी वहां। तो फिर इसका मतलब कितना जुबान को कंट्रोल करके जाना चाहिए, समझ लें, जब एहराम पहन लें, नियत कर लिए तो जुबान को लॉक लगा लें, अब जुबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो, इसके अलावा ना कुछ करें, वरना सारा हज का सवाब खराब हो जाएगा, हज मबरूर नहीं रहेगा फिर, जिसमें सारे गुनाह पिछले माफ हो जाते। फिर वो हज तो ठीक है आपका हो गया, एक फर्ज अदा हो गया, लेकिन हज मबरूर वाला जो अजर अगर लेना चाहते हैं ना, तो फिर इन चीजों से बचना पड़ेगा। तो अब जिन्होंने पिछला कर लिया, अब उनको क्या करें, मेरे तो अब इस्तगफार ही करें और क्या करें, दुआ करें अल्लाह ताला दोबारा बुलाए, फिर जरा ये आयतें पढ़ ली हैं तो अब जरा बेहतर वाला हज करेंगे। तो पहले जमाने में ना लोग ऐसे ही चला जाया करते थे, वो कहते थे कि हज पे जा रहे हैं तो कोई नहीं, वहां पे बस जैसे वो कहते ना, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा हमने कर लिया, कुछ हो ही जाएगा वहां जाके, बस चल पड़ो। तो फिर वहां पे गए तो अब जाहिर है खाना पीना भी तो है, अल्लाह के भरोसे को तो खा तो नहीं ना सकते, अब खाएं भी पिएंगे भी, कहीं रहना भी है, कुछ तो होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, वह तजव्वदु, ज्यादा राह लेके जाओ, ये नहीं कि बस अल्लाह पे हमारा भरोसा है ना, फिर वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देना, लोगों से मांग रहे हैं ये को मुझे ये दे दे, कोई खाना खिला दे, कोई पानी पिला दे, नहीं ये नहीं, अपना खुद इंतजाम करके जाओ। खाना पीने का पहले जमाने में तो साथ लेके जाया करते थे, तो अब आज के वक्त में खाना पीना तो साथ नहीं लेके जाते, लेकिन जो भी रास्ते का सामान है वो लेकर जाओ, ताकि तुम्हें वहां भी ना किसी और के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ये नेकी के मुनाफी हो, हम क्यों सामान लेके जाएं, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, वो खुद ही हमें खिला पिला देगा, नहीं तुम लेके जाओ अपने जो भी पैसे हैं, जो भी वहां का खर्चा है वो आप अपना करें। अगर किसी के पास खर्च ही नहीं है वहां पे करने के लिए, तो वो उसके ऊपर तो हज फर्ज ही नहीं होता, इसलिए कि हज फर्ज ही तब होता है जब ज्यादा राह भी हो, इंसान की सेहत भी हो, ज्यादा राह भी हो। तो सबसे बेहतरीन ज्यादा राह फिर तकवा। अच्छा एक बात और पीछे रह गई, ये इसी से मैं ज्यादा राह की बात जहां पे आई तो याद आ गई मुझे कि वमा तफालु मिन खैरिन यालमहुल्लाह, इसमें ये भी है कि वहां पे सदका व खैरात करना, आप जो भी सदका व खैरात कर सकती हैं वहां पे करें, और हर इबादत का वहां पे देखिए ना अजर कितना बढ़ जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सदका व खैरात का भी अजर वहां पे बढ़ा दे, तो अगर आप वहां पे जाके वहां के जो गुरबा मसाकीन को दे सके, खास तौर पे जो वहां पे लोग काम करने वाले हैं लेकिन उनकी बहुत थोड़ी पेज होती है, तो उनको दे दें, सफाई करने वाले हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कोई और लोग हैं, तो उनको दे, कितनी सारी खैर वहां पे तो हो सकती है ना सदका और खैरात के अलावा। वैसे भी आप एहराम की हालत में, वैसे ही एक इबादत की हालत में, आप वैसे ही एक अल्लाह के रास्ते में सफर में, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हाजियों की खिदमतें भी कर रहे हैं, हाजी की खिदमत करना कितना बड़ा ऑनर है। तो आप सिर्फ लोगों की खिदमत नहीं कर रहे, याद रखें वहां पे तो हाजी की खिदमत हो रही है, तो हाज वाले की खिदमत तो इतना बड़ा ऑनर था कि जो कुरैश को मिला था उसको अब अपने बहुत बड़ी अपने लिए समझते थे सआदत। व तकुनी या उलिल अलबाब, ए अकल वालो तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा ही होगा तो ये सारी इबादात में जान होगी, अगर तकवा नहीं होगा तो बेरूह होंगी, बस गए भी, रमी भी की, जमरात रमी, कुर्बानी भी हो रही है, सर भी मुंडाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, तो क्या पाया फिर। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फदलम मिन रब्बिकुम। अब एक और चीज बता दी गई जो जायज है हज में, ठीक है। पहले हमें क्या बताया गया कि वो चीजें नहीं करनी जो तीन थी। अब कोई लोग ये सोच सकते हैं कि वहां पे अगर हम जाएं और हम तिजारत करें, मतलब कोई सामान हम ले जाते हैं वहां पे हम बेचते हैं, तो क्या ये जायज है, जबकि हम तो हज पे जा रहे हैं, तो सही होगा या नहीं। या वहां पे जाके कोई बंदा जाए और वहां पे कुछ मेहनत मजदूरी भी कर ले, साथ हज भी उसने कर लिया, लेकिन कोई काम भी कर लेता है थोड़ा छोटा मोटा, उससे कुछ को कुछ पैसे बन जाते हैं, तो क्या सही है या नहीं। या कोई डॉक्टर जाता है वहां पे कोई मरीज चेक कर लेता है, उसको उसकी फीस मिल जाती है, तो सही है या नहीं। तो लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई तुम पे इसमें गुनाह नहीं है। अन तब्दा वो फदलम में रब्बी, उनके तुम तलाश करो फजल को अपने रब की, अल्लाह का फजल तलाश करो तुम। ये अल्लाह का फजल है, किसको कहा गया अल्लाह का फजल, रोजी को। ये कोई तुम रोजी तलाश करते हो ना, कोई तुम पैसे वहां पे कमाते हो, कोई तुम चीज वहां पे तिजारत की बेचते हो खरीदते हो कुछ इस तरह का करते हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मतलब ना किसी ने वहां से कुछ चीजें खरीद ली के यहाँ लाके बेचेगा, तो क्या ये गुनाह है, क्योंकि हम तो सफर पे गए हैं वहां पे हज के, तो अब इस किस्म की बिजनेस ट्रांजेक्शन करना ठीक है क्या। तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर तुम इसमें भी तलाश करो। अब यहाँ पे रिस्क नहीं कहा गया, फजल कहा गया। फजल क्या चीज होती है, जो इंसान डिजर्व नहीं करता, उसका हक नहीं होता, लेकिन उसको दी जाती है। यानी तुम ये ना समझो कि ये मेरा हक है तो मुझे मिली है, मैंने चूंकि इतनी मेहनत की, मैं इतनी काबिल हूं, मैं इतनी लर्नेड हूं, मुझे ये हुनर आता है इसलिए मुझे मिली है। नहीं, जो रिस्क भी इंसान को मिलता है वो सरासर अल्लाह का फजल होता है, उसकी इनायत होती है, ठीक है। फ़ाइदा अफ़त तुम मिन अराफात फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम। फिर जब तुम पलटो अराफात से, तो अल्लाह का जिक्र करो मशारे हराम के पास। यानी आप जो आप में से हज पे पहले गए हैं उनको तो ये बात समझ आएगी, जो नहीं गए हुए वो सुन के समझने की कोशिश करें, शायद उनको इतनी ना समझ आए, फिर इंशाल्लाह जब जाएंगे तो अल्लाह ताला लेके जाए सबको। कि जब तुम पलटो अराफात से, आपको पता है कि पहले हम मीना जाते हैं 8 तारीख को, फिर उसके बाद 9 को अराफात जाते हैं, फिर उसके बाद अराफात से शाम को जब मगरिब हो जाती है, तो बगैर मगरिब पड़े हुए हम मुजदलिफा की तरफ जाते हैं। मुजदलिफा एक वादी है, वैली है, ठीक है। वहां पे एक पहाड़ है, उसका नाम है मशरे हराम। तो बेसिकली मशरे हराम कह के मुजदलिफा ही मुराद है, कि यानी आप फिर जब पलटो अराफात से, यानी आपने अराफात में मगरिब की अजान हो गई है, अब निकलती हैं बसों में भी लोग, पैदल भी सब जा रहे हैं, फिर उस वक्त जब आप निकलते हैं तो फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम, तो मशरे हराम पे के पास यानी उस वैली में मुजदलिफा की आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र क्या करो, मतलब वहां पे जाके आप सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, मगरिब और इशा जमा करके पढ़ी थी। तो हमने क्या करना है, अराफात में मगरिब नहीं पढ़नी, हमने मुजदलिफा में जाके मगरिब इशा जमा करनी है। फिर उसके बाद नमाज के अजकार होते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि वहां पे सो गए थे मुजदलिफा में, तो हमने भी वहां पे सो जाना और वहां पे ठहरना है रात को। अब वो एक बिल्कुल ऐसी जगह है कि चटियल मैदान है, अब उसके अंदर वहां पे रात गुजारनी है। और फिर उठते हैं आप, तो फजर के बाद जब आपने नमाज पढ़ी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम भी लंबा फरमाया था उसके साथ, तो ये फिर अल्लाह का जिक्र हो गया। और जो सोना है वो भी सवाब का काम है, इसलिए क्योंकि आप एहराम की हालत में है ना, तो उस हालत में अगर आप सो भी रहे हैं तो ये इसलिए सो रहे हैं कि कल को एक लंबा दिन है, उसमें बहुत सारे काम करने हैं, रमी जमरात है, कुर्बानी है, और ये सब करने हैं, तो उससे पहले मैं अपने आराम करके अपनी एनर्जी गैदर करूं, ताकि मैं कल ताजा दम हो के अल्लाह की इबादत कर सकूं, अल्लाह ताला की ये सारे जो हज के मनासिक हैं पूरे कर सकूं। वो आपका सोना भी इबादत है, याद रखें। जो काम भी आप इस नियत से करते हैं ना कि मैं अपने घर में भी अगर आप सोते हैं और आपको ये है कि मैंने फजर के लिए उठना है, मैं जल्दी इसलिए सो रही हूँ कि मुझे तहज्जुद के लिए उठना है, मेरी तहज्जुद ना खराब हो जाए, आप यकीन करें सारी आपके रात का सोना इबादत में लिखा जा रहा है। और क्या चाहिए हमें इसके बरक्स, अगर इंसान है सोना तो है ही, वो तो हर एक ने सोना, काफिर भी सो रहा है मुसलमान भी सो रहा है, एक का सोना उसके लिए सवाब का बाइस बन गया, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, बस वो सोया तो वो भी था, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो देखें बाज दफा इंसान
इन चीजों को समझ के किस तरह अपने लिए अजर कमा सकता है। इसीलिए अगर हम अपनी पार्टीज, अपनी ये इस तरह के इवेंट्स अर्ली रखें, सिर्फ इस खातिर कि अगर मैं देर की, जितने लोग मेरे घर से जाएंगे वो जाके लेट सोएंगे, और लेट सो के पता नहीं फिर फजर पे भी उठ पाएंगे, नहीं तहज्जुद को तो छोड़ ही दे, उनकी फजर लेट होगी, तो आपने भी अजर कमा लिया। अगर आप ये नियत रखते हैं तो हम अपनी ना, अपने स्केड्यूल्स को ना नमाजों के गिर्द घुमाया करें। किसी को उस वक्त ना बुलाएं जिस वक्त ऐन नमाज का वक्त है, उस वक्त वो कैसे आ सकता है? या तो अपने घर से नमाज पढ़ के चले तो आपके घर लेट पहुंचेगा, आपके घर आके नमाज पढ़ेगा तो फिर उसकी नमाज कजा हो जाएगी। तो इस तरह अपने स्केड्यूल्स को हमें रखना चाहिए। तो खैर ये तो साइड की बात हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वत्कुरू कमा हदाकुम, याद करो अल्लाह को जैसा कि उसने तुम्हारी रहनुमाई की, जैसे उसने तुम्हें सिखा दिया, क्या जैसे उसने तुम्हें बता दिया। यानी अल्लाह ताला का जिक्र भी मन माने तरीकों से नहीं करना, बल्कि वो ही तरीका करना है जो अल्लाह ने बता दिया। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमें कुछ तरीके हैं जो हमने खुद ही इजाद कर ली। मिसाल के तौर पे एक तरीका आपको बताऊं, अल्लाह हू का वजीफा, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू करते रहते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं बस आप ये करो ताकि आपकी धड़कन भी अल्लाह हू बोलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अल्लाह हू का जिक्र बताया? या और अजकार है अपनी तरफ से बनाए हुए, क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अजकार से भी अच्छे हैं? ये तो सिर्फ मुझे बता दें लोग। कहते हैं ये पढ़ लें कि नहीं पढ़ लें, बस नहीं पढ़ लें, आप देखें पहले कि वो सुन्नत से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पे कई दुरूद है जो मसनून नहीं है, किसी और ने लिखे हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, क्या मेरे नबी के अल्फाज से भी ज्यादा अच्छे हैं? जो उन्होंने दुरूद सिखाए उनसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको? तो फैसला तो पहले ये कर लेना कि किसके अल्फाज ज्यादा आपको पसंद है, किसके अल्फाज ज्यादा अच्छे होंगे, किसके ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, किसके ज्यादा मुझे अजर व सवाब देने वाले होंगे। तो जिक्र भी वो करना है जैसी कि अल्लाह ने रहनुमाई की तुम्हारी, अपनी तरफ से ना शुरू कर लिया करो कि मेरा ये आइडिया आया है, इस तरह किया जाए। तो अब मसलन को कर कर मैं तो सोचती हूँ कि अगर सर नीचे और पैर ऊपर करके जिक्र किया जाए उसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। भाई आप कहाँ से ये कह सकते हैं, आपके पास कोई दलील है? ये तो इस तरह खुद से नहीं निकाल सकते, जैसे अल्लाह ने हिदायत दी। अगर आप इस एक बात को समझ जाएंगे ना, ये तीन सिर्फ लफ्ज हैं, वस्कुरू हु कमा हदाकुम, सिर्फ इतनी बात को समझ लें और याद कर लें। जब आपको कोई कहे कि आप ये वाला इस तरह से तरीका करें तो कहें नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्कुरुहु कमा हदाकुम। एक एक जवाब है ना आपके पास, अल्लाह ने अगर ये बताया है ना अपने नबी के जरिए तो मैं ये जिक्र करूंगी। क्योंकि जिक्र किसको राजी करने के लिए करना है, किसको खुश करना है, आपने अजर अल्लाह से लेना है ना। तो जो उसने बताया नहीं वो कर रहे हैं, दीन के मामले में खुद अपनी मर्जियां नहीं कर सकते। दूसरा माना कमा का क्या है, बवजह, बवजह बिकॉज, वस्कुरू याद करो उसको, क्यों, बिकॉज बवजह इसके के हदाकुम, उसने तुम्हें हिदायत दी। देखो इतनी बड़ी उसने तुम्हें नेमत दी है, तुम इस वजह से उसका जिक्र करो। देखिए जिसको नेमत हिदायत की मिल जाए ना, वो इतना खुशकिस्मत है, उसको पता है कि ये मुझे क्या बड़ी चीज मिल गई। जिसको मिली ना, उस अंधे को क्या पता कि रोशनी क्या होती है, नूर क्या होता है, वो तो अंधेरों में रहने का आदी हो गया। पता नहीं है हम भी इस हिदायत की, नेमत की कदर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें इसका एहसास भी है कि नहीं है कि हमें कितनी बड़ी चीज अल्लाह ताला दे रहा है। हमें पैसे मिले तो हमें बहुत खुशी होती है, आए किसी को बोनस मिल गया इतनी खुशी, वो तो पार्टी देता है इस बात पे कि मुझे बोनस मिला, मेरी पे बढ़ गई है, तो उसके ऊपर ट्रीट दी जा रही है। लेकिन हिदायत की नेमत इसकी कोई कदर नहीं है, ये तो मिले नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मिल भी गई है तो कोई नहीं, क्या कौन सी ऐसी बड़ी चीज है। हिदायत की नेमत को छोड़ के कहते हैं पैसों की नेमत मिल जाए, वो मिल जाए, हालांकि वो पता नहीं, वो तो इम्तिहान ही बन जाए कल को। तो याद करो इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हें हिदायत दी, और हिदायत बहुत बड़ी नेमत है। जिसको कि इतनी बड़ी नेमत मिल जाए, जो उसका दिल चाहता है ना कि वो गुन गाए उसके, जिसने उसके ऊपर ये एहसान किया, वो चर्चे करे, वो उसका नाम बुलंद करे कि उसने मुझे दिया है। जैसे हमें कोई देता है तो हम थैंक यू करते नहीं हटते, इतने बड़े थैंक यू के नोट भेजते हैं, कितनी दफा उसका शुक्रिया अदा करती हैं, बिछ बिछ जाती हैं। तो जिसको ये कदर हो कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, वो तो उसके बहुत चर्चे करेगा, बहुत जिक्र करेगा, बहुत याद करेगा उसको। तो बहुत प्यारी बात है। वह इन कुन तुम मिन कबली ही लमिन दौलीन, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, इससे पहले तुम्हें कहाँ कुछ पता था, तुम तो गुमराह थे। यानी इस्लाम की नेमत दे दी तुम्हें, देखो तुम्हें हिदायत दे दी ना इस्लाम दे के, तुम्हें ये राह दिखा दी, तुम्हें ये मनासिक सिखा दी है हज के। पहले तो लोगों को अपनी तौर पे कई चीजें की हुई थी, आप सोचे कि हज को ना मेला ठेला बनाया हुआ था उन्होंने। या हज क्या है? पार्टी टाइम है, फन टाइम है, एग्जीबिशन है, यानी सारी दुनिया से चीजें लाके बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये जो खरीदने बेचने की बात पीछे आई फजल की बात, इसमें एक ये भी बात नोट कर लें, याद रखें तिजारत करना वहां पे कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस नीयत से ना कोई जाए कि मैं जा ही किस लिए रहा हूँ, कि वहां पे जाके कुछ बिजनेस हो जाए, चलो साथ हज भी हो जाएगा, ये नहीं ये कहें हज हो जाए, चलो साथ बिजनेस भी हो जाएगा, साथ चार पैसे भी कमा लेंगे। तो मेन पर्पस इसको ना बनाए कि तिजारत करनी है, मेन पर्पस ये हो कि इंसान हज का फरीजा अदा करे। समझ आ गई बात? अगर कोई हज के ग्रुप भी लेकर जाते हैं या कुछ उससे कोई कमाता है, तो ये नहीं मेन पर्पस होना चाहिए कि ये बस मेरा बिजनेस है, ये मेन पर्पस होना चाहिए कि मेरा हज हो जाए। इसी तरह यहाँ पे कि इससे पहले तुम्हें पता नहीं था, तुम गुमराह थे, तो वो आते थे यहाँ पे अपने बड़ों के चर्चे करते थे, आगे बात आएगी भी, अपने बड़ों की कहानी उनके किस्से बताते थे, उसके ऊपर फखर करते थे, और बस खरीदो फरोख्त और मेला ठेला और ये वो, बस ये फन टाइम हो गया। तो नहीं, अल्लाह ताला ने फिर हिदायत दी, और देखो इसको कितना मीनिंगफुल बना दिया हज को। तुम अफीदु मिन हैसु अफाद नास, अब ये बात कही गई कि फिर तुम पलटो जहां से पलटते हैं लोग। ये किसके लिए कहा गया? कि असल में इस्लाम से पहले कुरैश मक्का जो थे वो इतना अपने आप को सेक्रेट समझते थे कि वो कहते थे हम अरफात तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अरफात जो था हदूद हरम से बाहर था, अरफात जो था हदूद हरम में नहीं है, मुजदलफा मीना ये हदूद हरम में है, ये अरफात बाहर है। तो कहते थे हमारी ये लोग दूसरे जाए ना जो कुरैश के नहीं है, हम इतने बड़े लोग हैं हम क्यों बाहर जाए, तो वो नहीं जाते थे अरफात तक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम भी जाओ वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं, जहां से और लोग जाके पलटते हैं। तो आप देख लें अल्लाह ताला ने हज है या ये जितने भी हज के मनासिक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं रखा कि कोई कुरैश है तो वो ऐसे करेगा, जो दूसरे हैं वो तो ऐसे करेंगे। अब कुरैश ने तो अपना लिए वो भी रखा हुआ था ना कि हम तो इतने बड़ी चीजें, हम तो अपने कपड़ों में करेंगे, बाकी सारे लोग नंगे करेंगे, क्योंकि उनके पास जो कपड़े हैं वो तो गुनाह वाले कपड़े हैं, उनमें तो उन्होंने गुनाह किए होंगे, तो वो अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझते हैं। अल्लाह ताला ने सारी डिस्क्रिमिनेशंस जो है ना हज में खत्म कर दी। आज देखिए आप हज क्या है कि कोई रेसिज्म नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, जेंडर, लैंग्वेज सब खत्म कर दिए। किसी का ब्लड सेक्रेड नहीं है, कोई सैयद ज्यादा ज्यादा नहीं है कि वो आगे बैठेगा, आगे हरम में खड़ा होगा, वो तवाफ पहले करेगा दूसरे बाद में करेंगे, या टाइमिंग्स रखे हो एशियंस जो है इस टाइम पे करें उनके लिए बस यही टाइम है, बाकी सारा टाइम अरब के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है वहां पे। सुभान अल्लाह, फिर भी हमारे दिमागों से ये रेसिज्म नहीं निकलता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं निकलती, फिर भी नहीं निकलती। सोचें जबकि अल्लाह ताला ने हमें सारे हज में सिखाया, ये कहीं आप नहीं देखेंगे कोई डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी क्यों नहीं समझ आती हमें? अस्तग़फिरुल्लाह, और बख्शिश मांगो अल्लाह से। यानी जो चीजें पहले हो गई, जो पिछली रस्में, जो जो भी तरीके अपने तौर पे निकाले हुए थे, उनके ऊपर अब तोबा करो अल्लाह से। इन अल्लाह गफूर रहीम, जो पहले गुजर चुका अल्लाह ताला माफ करने वाला, मेहरबान है अल्लाह, बख्शने वाला है, उसके ऊपर सच्ची तोबा की जाए। अल्लाह ताला हमें ये आयात समझने की, सीखने की, सही से इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन आयात के साथ ही ये दुआ है अल्लाह ताला हमें सबको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए। पहले किया भी हुआ तो अल्लाह ताला फिर तौफीक अता फरमा, अल्लाह हज मबरूर की तौफीक अता फरमा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक अनदर ब्यूटीफुल लेसन था आज हमारे लिए। आप इसको, इन आयात को सुने और एक एक लफ्ज को देखें आपके, अब आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। जब आपने तफसीर सुनी है तो इससे सुनने से पहले कैसा लग रहा था सुन के पढ़ के ना आया आपको, और तफसीर सुनने के बाद अब ये आयतें कैसी लग रही हैं, ये देखें डिफरेंस।
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم